वेलकम बैक तमाम सामीन को और नाजरीन को जो हमें सुन रहे हैं ई आवाज रेडियो पर और देख रहे हैं ई आवाज टीवी पर, आप सबको एक बार वेलकम। और आपको मालूम है कि आप नंबर डायल करके सुन सकते हैं 6478724900। इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com और हमारा IPTV ई आवाज टीवी के नाम से तमाम ही IPTV बॉक्स मौजूद है, इसे उर्दू या पाकिस्तानी कैटेगरीज में बआसानी ढूंढ सकते हैं। और जनाब ये वो टाइम हो गया है जब बिग बैंग टांग टंग नहीं घंटा बजता, बस ये इन्होंने भी आते ही घंटा बजाना शुरू कर दिया था। हालांकि इनके सिर्फ 4 फॉलोअर्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है। कम से कम मेरी वीडियो पे कुछ 26,000 से ज्यादा व्यूज हैं। 4 और 26,000 कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। ये उतना ही डिफरेंस है जितना अमरीका और कैनेडा की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर है। उतना ही है। 80% वो कहते हैं कि जनाब हम जो है वो अमरीका से, अमरीका कहते हैं भाई हमारा तो 17% के आसपास है, चिन्नी विन्नी चिंदी चोर कुछ नहीं होगा। इतना ही डिफरेंस 26,000 और 4 में भी होता है। चलें जनाब, साउंड इफेक्ट आपने सुन लिया और मजेदार खबरें सुनाने के लिए रिस्पेक्टफुली मैं इनको इन्वाइट करूंगा प्रोग्राम में, खुश आमदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाजिया जी कैसी हैं?
WSM ठीक है। नहीं यानी अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं शो करोगे तो हम खबरें नहीं सुनाएंगे।
नहीं
खबरें तो हम फिर भी सुनाएंगे।
खबरें तो सुना देंगी।
हाँ जी।
वो मसला है ना कि यार बाहर वाले नहीं देते तो कि हम भी ना दें। हम तो अपना काम पूरा करेंगे। अब 4 फॉलोअर से बढ़ नहीं रहे तो उसमें हमारा क्या कसूर, लेकिन हम अपना काम पूरा करते हैं।
हाँ, हम तो टिल भी दिखा दे तो 26,000 है।
अल्हम्दुलिल्लाह, गुरूर कभी नहीं किया।
आए, आए, आए,
मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की।
हाँ।
आपको 101% दिया, अस्सलाम वालेकुम कहा।
हाँ।
रिस्पेक्ट भी दी।
हाँ।
मैं हमेशा देता हूँ।
हाँ।
और अब आप फॉलो ना बढ़े या आपका कुछ
हमारे अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है,
बड़ा फॉल्ट है, छोटा मोटा नहीं है।
मैन्युफैक्चरिंग
पूरा ग्रेड स्टेशन ही फॉल्ट में, तारे वाली होती है छोटी मोटी,
नहीं
ग्रेड स्टेशन पूरा फॉल्ट,
पूरा फॉल्ट में। ये भी मुझे लग रहा है इधर भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है।
कॉमेंट ना करूं तो अच्छा।
नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट
सर, कभी कभी सालों के बाद पाकिस्तान जाना पड़ जाता है तो मैं इस किस्म की गुफ्तगू शनीद में हिस्सा बिल्कुल नहीं लेता।
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है,
बिल्कुल नहीं लेता।
एडा यरकू नहीं मैं समझा दी दिन तीनू। अच्छा अच्छा, कोई नहीं मासूम बंदे, तुम ऐसा करो तुम बीवी की भी सुनो, हमारे से भी सुनो, वो जो बड़े पिंडी में बैठे हैं उनसे भी सुनो। माँ बाप से तो तुम सुनते ही आयो सारी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी ख्वार है इसीलिए तुम जो है ना जन्नत के ख्वाब देख रहे हो। अब
मैं कह रहा हूँ मिशन बहुत बड़ा है।
मिशन बड़ा है। मकसद, मिशन नहीं,
मकसद एंड रिजल्ट अच्छा होना।
हाँ, मकसद वर्ड है सही,
बस मकसद,
मिशन वर्ड नहीं है,
मिशन नहीं है तो मकसद।
हाँ, मकसद बड़ा है,
वो बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है।
उसके आगे सब
चिंदी चोरियां कुछ भी नहीं है।
ये वही बात है ना, किसी का 60 मिलियन लॉटरी निकली, जैसे आज 5 आज ये न्यूज होगी, पता नहीं आपने, कोई खातून है बोमनविल की ऑन्टेरियो में, उन्होंने जो है वो सुबह उठी चाय वाय उन्होंने जो भी उन्होंने लिया और उन्होंने कहा यार चलो आज मैं टिकट देखती हूँ। तो उन्होंने टिकट देखा तो उनको लगा कि यार मेरे तो $5,000 निकल आए और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। और आपको पता है उनके एक्चुअल में कितने निकले?
5 मिलियन।
5 मिलियन क्रेजी।
यानी मुझे तो अल्लाह ताला,
हम तो रोज नाचे $100
के जिंदगी गुजर गई है, जिंदगी गुजर गई इस चीज में कि कोई अमिताभ बच्चन की तरह का डॉन हमारे घर में गुजरे, पैसों का बैग फेंके, कोई हमारी लॉटरी निकले, कोई हम पीछे डिगिंग करें तो नीचे जो है
खजाना निकले,
खजाना निकले। यानी ये जिंदगी की खाई ही रह गई है। अल्लाह ताला ने वैसे कोई खाई पूरी नहीं की मेरी जो है ना, वो बड़ा ही मुझे अफसोस है इस चीज का। और तुम जैसों के देखो $7 मिलियन निकाल दिए उसने।
अल्हम्दुलिल्लाह। काश मुझे आपके मुंह घी क्या घी घी
शक्कर।
देखिए समटाइम क्या होता है ये भी एक वो है एक स्टाइल है।
अच्छा
आप हालांकि निकले निकले कहीं नहीं है लेकिन अक्सर
में निकल गए
पूरा टोरंटो को ये मालूम है कि आमिर अहमद के 7 मिलियन USD लगे तो ये सब दुआ करके चलो कहीं ना कहीं निकल ही आएंगे। आई एम वेरी गुड आई एम वेरी हैप्पी।
तुम्हारी जेब में नहीं निकले वो तुम्हारे बैंक में निकल गए।
पता नहीं कहाँ निकल गए वो बैंक भी मुझे नहीं मिल रहा। कोई ऐसा बैंक बता दें यहाँ से मैं निकाल लूँ। अशद जरूरत है
अशद जरूरत है। हाँ। अपना ढीला करो ना जरा डिजिटल वॉलेट जो है उसको USD में ट्रांसफर करो ना 10 मिलियन Canadian dollars बन जाएंगे वो।
इंशाल्लाह आपकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले
इंशाल्लाह।
आपके भी मसाइल खत्म हो
यार कसम से मसाइल खत्म।
तो आज क्या गर्मा गर्म खबरें
हैं? बड़ा गर्मा गर्म खबरें हैं जी आज बहुत सारी। आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग
लेकिन एक बात आपकी न्यूज से पहले रुकूंगा। आप कहते हैं पाकिस्तान के थोड़े हालात टाइट हो रहे हैं स्क्रू टाइट होगा यूएस की तरफ से दो चार लोगों के आपने नाम भी लिए थे। यहाँ तो बड़ी गुड्डी गुड्डी हो रही है और लेन देन शुरू हो रही है।
वो लेन देन इसलिए हो रहा है क्योंकि कल उन्होंने टाइट कर दी है ना स्क्रू। वो तो वो ये ऐसे
मेरे भी आपको याद है आपने कहा था को 4 वीक 3 वीक का कोई टाइम दिया था और मैंने कहा था कि जी अब आप
और वो कल की न्यूज आ गई थी ना कल न्यूज आ गई थी सारी एड बंद कर दी है।
नहीं 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 यहाँ करेक्शन 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 इसकी ये है जो आप कह रही हैं वो उन्होंने ये कहा अमरीका ने कि यूएन के तहत जितनी भी गैर मुल्क
यूएन का क्या ताल्लुक है उनके
साथ जो वो यूएस एड कह ले
बाकी भी जो
यूएस एड के थ्रू हम जितनी तमाम गैर मुल्की स्पेसिफिकली
एम्बेसडर्स फंड ऑल्सो जो कि फंड करता था पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें हेल्थ केयर एजुकेशन
स्पेसिफिक न्यूज का कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि यूएन एड की जो तमाम गैर मुल्की जितने भी गैर मुल्की एड है हम उसको कट करेंगे। देयर इज नो स्पेसिफिक पाकिस्तान माय पॉइंट इज देयर इज नो स्पेसिफिक पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की एनर्जी में
लिए उन्होंने किया बहुत अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा था वही मैंने आपको कर रहा नहीं आज उन्होंने सिर्फ बात की है कर रहा नहीं है अभी बात हुई है खाली आज डेलीगेशन जो है उसने बात की है खाली। तो उन्होंने कहा है कि हम जो है वो कल भी कांग्रेसमैन जो थे उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप सारी दुनिया में रोक रहे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान इसके बहुत बुरे इफेक्ट्स आएंगे तो आप ये ना करें। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं वो मैंने आपको पूरी कहानी कल मार्को रूबियो की भी सुनाई थी लेकिन बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता क्योंकि आप गजनी है। उसने कल कहा एक एक डॉलर जो हम स्पेंड अप करेंगे हमें पता होना चाहिए कि क्या वो हमारी सिक्योरिटी
मेरा जो कहने का मकसद था ना आपने जो कल न्यूज सुनाई 100% बिल्कुल सही आप जो बात कर रही है कि पाकिस्तान के ऊपर ही की है। मेरा कहने का मतलब है इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान पॉइंट
तो कल ही बोला था कि उन्होंने कहा कि जहां जहां
आज जो इनकी मीटिंग हुई है जो वक्त पहुंचा हुआ है वो तो उनके साथ कहता है जी हम तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आपके एनर्जी में
इन्वेस्ट किया नहीं है। ये जो पैसे थे ना ये जो पैसे थे ये इन्वेस्टेड थे इन्वेस्टेड थे यूएस एड के प्रोजेक्ट
यूएस एड वाले निकलेंगे और दूसरे वाले आ जाएंगे।
ये प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तो उन्होंने शट डाउन कर दिए अब और उसमें एक रुपया अब नहीं आएगा। ये जो आज का डेलीगेशन है इन्होंने कहा जी हम करेंगे
करेंगे
तो जो ऑलरेडी किटी में होता है उसमें और करेंगे में बहुत फर्क होता है। हाँ तो इसलिए
पॉजिटिव नॉट ओ नेगेटिव
प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा भाषा। राजा भाषा जी जो है आपको पता ही है ढेर सारे आपके पैसे बचा सकते हैं 1775 जैसे उन्होंने आमिर के बचाए हैं। तो अगर आपको ऑटो और होम का लोन चाहिए नहीं इंश्योरेंस चाहिए तो आप उनसे राजा भाषा को कॉल करें। इसके अलावा जनाब विलेज टेस्ट में होते हैं फैसल चट्टा साहब दो उनके रेस्टोरेंट्स हैं एक मिसिसागा में एक ओकविल में। अगर आपको खाने में एंजॉय का मजा लेना है तो आप उनमें से किसी एक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं और मजा ले सकते हैं। चोपड़ा ज्वेलर्स जो है वो उनकी बहुत जबरदस्त डील्स हैं वो कहते हैं जी दुबई जैसा फील आएगा आपको और जो है वो अगर आपको अपनी फैमिली का कोई भी ओकेजन है तो आप जो है हमसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा पायल ज्वेलर्स पर भी जबरदस्त इंडिया पाकिस्तान सिंगापुर की ज्वेलरी है वहां पे असलम भाई होते हैं उनसे जाके आप संपर्क करें तो आपको बहुत सारी अच्छी ज्वेलरी मिलेगी। एंड जनाब सुल्तान भाई वो कहते हैं अगर आपको शैंपेन या एमरल्ड कलर के कुछ बंडल के अंदर अप्लायंसेज चाहिए तो बहुत ही कम प्राइस पर मिलेंगे तो 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे होते हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज वहां पर आप जाएं तो आपको मिलेगा। चलो जी हम आपको एक और भी अच्छी भी खबर सुनाते हैं कि जो इंडस हॉस्पिटल है उनका भी एक फंड रेजर आ रहा है फ्राइडे February 7th को और इकरा अजीज एंड यासर हुसैन उसमें आ रहे हैं तो अगर आपको उस फंड रेजर में हिस्सा लेना है तो आप प्लीज उनको जरूर कॉल कर लें या उनको विजिट कर लें @indushospital.ca तो आप जरूर इस कार्य खैर में जो है वो हिस्सा लें। अच्छा जनाब आज की तो सबसे बड़ी खबर जो मेरे जैसे गरीब आमिर जैसे अमीर आदमी को नहीं जिसके पास 7 मिलियन US डॉलर इसके डिजिटल वॉलेट में पड़ा हुआ है मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी खबर है। बैंक ऑफ कनाडा जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स उसने कहा जी हम कट कर रहे हैं एंड दिस इज द सिक्स्थ कंसेक्यूटिव टाइम कि ये इन्होंने रेट्स को नीचे लाया, क्योंकि वो कह रहे हैं जी कि इन्फ्लेशन जो है हमारी 2% के करीब है और 25 बेसिस पॉइंट्स आज कट किए थे और इन्होंने कहा जी कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्ट्रेंथन होगा 2025 में अगर जो है वॉर ट्रेड वॉर ना शुरू हो गई यूएस के साथ। बैंक के जो गवर्नर हैं टिफ नेकलम, उन्होंने आज रिपोर्टर्स को बताया कि टैरिफ्स तो बिल्कुल हमारे माइंड में है और अनसर्टेनिटी भी पैदा किए हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ वाहिद फैक्टर्स नहीं है जिसमें कि हम मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं जिसकी के बेस पे आज हमने ये रिलीज की है रिपोर्ट। सारी स्कोप और ड्यूरेशन ऑफ पॉसिबल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इम्पॉसिबल है कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, लेकिन एमपीआर जो है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो रिपोर्ट जो है हमारा उसका प्रोजेक्शन ये है कि हम अगर टैरिफ्स ना लगें तो हम ठीक ठाक रहेंगे इस साल में। और वो कहते हैं जी कि ये जो टैरिफ्स होते हैं ये हमेशा इकोनॉमी को हर्ट करते हैं और हमारा ये काम है जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो ये होती है कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को एफिशिएंटली चला सकते हैं और जो है वो कैसे इसको इन चीजों को ऑफसेट कर सकते हैं यानी कि इनका मुकाबला इनका चैलेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये हम जो है सिर्फ बैंक ऑफ कनाडा जो है वो सिर्फ एक सोर्स पैदा कर सकता है फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बाकी जो अनसर्टन चीजें होती हैं उसके ऊपर नहीं। दोबारा जी मेन बात यही है कि आज फिर से 25 बेसिस पॉइंट्स जो हैं ये कम हुए हैं। अच्छा जनाब, ओंटेरियो का आज अनाउंस कर दिया गया है कि फरवरी 27 को इलेक्शन आएंगे, तो इसमें आज जो है एक साल पहले, मैंने आपको कल भी बताया 16 मंथ्स पहले ही इन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। कल मैंने आपको सारी रामलीला की कहानी सुना दी थी किस तरह जो है वो फोर्ड साहब जो है वो गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास और वो उन्होंने मान लिया है कि लेजिस्लेचर जो है उसको डिसॉल्व किया जाए। तो पीसी लीडर जो है हमारे डग फोर्ड साहब, उन्होंने अपने आप को कहा जी कि अगर टैरिफ्स लगे अमेरिका की तरफ से तो इस इकोनॉमी को चलाने के लिए मैं बेस्ट आदमी हूं, मैं इफेक्टिवली इस चीज को डील करूंगा और मेरा पूरा एक प्लान है। उन्होंने कहा जी आज मेरा प्लान, उन्होंने कहा जी कि मेरे पास है। अपनी फर्स्ट ऑफिशियल कैंपेन इवेंट जो आज विंडसर में वो कर रहे थे और वहां पे खड़े हुए थे जहां पे एम्बेसडर ब्रिज पीछे उनको नजर आ रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ट्रंप साहब ये गेम्स खेलते रहते हैं, इनका तो काम ही है डिवाइड एंड कॉन्कर और हम जो है इसके लिए एक प्लान बना के लेकर आए जो हम रोल आउट करेंगे। बॉनी क्रॉम्बी जो कि लिबरल लीडर हैं ऑन्टेरियो में, उन्होंने वो आज बैरी में थी और उन्होंने उनके साथ वो कैंडिडेट थे बैरी स्प्रिंग वाटर और मिडोंटे रोज जैकेरियास, ये डॉक्टर हैं और पहले प्रेसिडेंट रही हैं ऑन्टेरियो मेडिकल एसोसिएशन की। इन्होंने भी कहा है कि जी हम अब नेक्स्ट 4 ईयर्स में इंश्योर करेंगे अगर जीतेंगे कि हर ऑन्टेरियो की फैमिली के पास एक डॉक्टर रहे। एनडीपी के लीडर जो हैं मैरिट स्टाइल्स, उन्होंने भी आज जो हैं कहा कि हम ये जो है निगोशिएट टैरिफ्स कर सकेंगे क्योंकि मेरा तो तजुर्बा भी है ये निगोशिएट करने का यूएस के साथ और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके अंदर हम उनको कहेंगे कि जी हमारे जॉब्स प्रोटेक्ट करो। उन्होंने कहा जी कि फोर्स ऑफ स्नैप इलेक्शंस इसलिए लेकर आए हैं कि वो कह रहे हैं जिससे वो टैरिफ्स का मुकाबला करेंगे, वो ये नहीं करना चाहते, वो अपनी जॉब को बचाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि जी मुझे हायर करो एज निगोशिएटर, तो लुक एट हिम, उसके रिकॉर्ड को देखो। और बड़ा उन्होंने मतलब इस तरह से एतराज किया आज फोर्स पे। ग्रीन पार्टी के लीडर जो है माइक श्नाइडर, उन्होंने भी कहा जी कि फोर्ड साहब जो है सिर्फ अपना ख्याल करते हैं अपनी जॉब का, ऑन्टेरियो के लोगों का ख्याल नहीं करते हैं। आरबीसी के कुछ कस्टमर्स जो हैं ऑन्टेरियो में, उनको काफी प्रॉब्लम हुई ये जो $200 का रिबेट चेक आया था गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो की तरफ से, काफी सारे लोगों के चेक्स जो थे वो बाउंस हो गए थे और बैंक ने कहा है कि हम इस इश्यू को रिजोल्व कर बैठे हैं। उन्होंने आज बहुत सॉरी किया इस इनकन्वीनियंस के लिए, उन्होंने कहा जी कि बहुत रेयर ओकेजन में होता है कि जब हमारे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो होते हैं वो चेक्स को नहीं पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से वो बाउंस कर जाते हैं, लेकिन ये चेक्स जो है ये प्रोसेस होने चाहिए थे। स्पोक्स पर्सन फॉर ऑन्टेरियोज मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने भी कहा था कि हमको पता है कि ये कोई प्रिंटिंग इशू आया था और रिबेट्स कुछ लोगों के क्लियर नहीं हुए हैं लेकिन इसको किया है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये जो रेशो है 0.002% ऑफ 7 मिलियन चेक्स जो मेल किए गए हैं उसमें इफेक्ट उसने किया है, यानी कि बिल्कुल ही नेग्लिजेबल है। और आपको पता ही है फोर्ड गवर्नमेंट ने अक्टूबर में लास्ट ईयर जो है ये अनाउंस किया था कि ये $200 के चेक्स दिए जाएंगे 12.5 मिलियन टैक्स पेयर्स को और इसमें जो ऑन्टेरियो गवर्नमेंट की कॉस्ट थी वो $3 बिलियन जो थी वो आई थी। होंडा कनाडा जो है उसने रिकॉल किए हैं जी 17,000 व्हीकल्स ड्यू टू सॉफ्टवेयर ग्लिच, जिसकी के वजह से जो है इंजन जो है एकदम स्टॉल हो जाता है इन सब मॉडल्स में। जो रिकॉल है ये 2023-25 के जो मॉडल्स हैं होंडा पायलट 2022-25 एक्यूरा एमडीएक्स टाइप एस, 2021-25 एक्यूरा टीएलएक्स टाइप एक्स मॉडल्स। उन्होंने कहा जी इन प्रॉपर जो प्रोग्रामिंग इसमें की है वो अब्रप्टली चेंजेस ले आ जाती है और उसकी वजह से जो थ्रॉटल है उसके वजह से इंजन के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं और ड्राइवर जो है अपना लूज कर जाता है पावर उसके ऊपर स्टेयरिंग पे और ये इसमें काफी क्रैश और इंजरी के जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और बात आमिर साहब वही आ गई है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना अब गाड़ियों के भी सॉफ्टवेयर उन्होंने कहा जी अपडेट करेंगे। तो इसी तरह जो है होंडा की जो 295,000 जो मॉडल्स हैं वहां पे भी इनको रिकॉल किया गया, लेकिन अभी तक कंपनी कहती है कि हमें कोई क्रैश और इंजरी के कोई रिपोर्ट्स नहीं आए हैं। यूके के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डर गए हैं, ये जो डीप सी आ गया है चाइना की तरफ से, और उसने कहा जी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे लिए पैदा कर सकेगा, और वो जो जो भी यूके के अंदर यूजर्स इसको अब यूज करने का सोच रहे हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है आप बहुत ज्यादा विजिलेंट रहे, ऐसा ना हो कि आप यूज करना शुरू करें और आपका सारा डाटा जो है वो चोरी हो जाए। ये जो चैट बॉट है वो कहते हैं जी कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है और जो चाइनीज स्टेट है वो आपका इन्फॉर्मेशन और डाटा जो एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारे यूके के ऑफिशियल्स इस चीज को पूरा मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को तो थ्रेटन नहीं कर रहा, और अगर जरूरत रही तो हम एक एक्शन भी लेंगे इनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने आज लोगों को भी बोला कि आप भी थोड़ा सावधान यहां के रहो, और जो एक्सपर्ट्स हैं यूके के वो कह रहे हैं कि हम बड़ा अलार्म्ड हैं इस चीज के पीछे क्योंकि हम चाइनीज गवर्नमेंट को और उनके किसी भी प्रोडक्ट को इतना बहुत ज्यादा यानी भाव नहीं देते हैं, यानी कि ज्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ट्रंप साहब जो हैं जी उन्होंने आज एक और भी बहुत बड़ा अब ऑर्डर दे दिया है, अब फिर ये मुसलमानों के ऊपर तलवार इनकी गिरेगी, और उन्होंने कहा जी आई वांट टू कॉम्बैट एंटी सेमेटिसिज्म, और उन्होंने कहा जी उन तमाम नॉन सिटीजन कॉलेज स्टूडेंट्स, अब क्या मतलब है नॉन सिटीजन कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं या कि रेजिडेंट एलियंस जो हैं उनको फौरन जो है कॉलेजेस में से निकाला जाए जो कि प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट के अंदर इन्वॉल्व थे। व्हाइट हाउस ने आज ये प्रेस रिलीज अपनी में कहा, उन्होंने कहा जी कि एक जो फैक्ट शीट आई है ऑन ऑर्डर उसमें कहा गया है कि ये ऑर्डर्स दिए गए हैं जस्टिस डिपार्टमेंट को कि एग्रेसिवली प्रोसिक्यूट करें ये टेररिस्ट थ्रेट्स आर्सन वेंडलिज्म वायलेंस अगेंस्ट अमेरिकन ज्यूज, और उन्होंने कहा जी कि जो कोई भी प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेगा उसको नोटिस पे डाला जाएगा। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब ने ऑलरेडी भी कहा था कि कम 25 वी विल फाइंड यू एंड डिपोर्ट यू, और उन्होंने ये भी कहा है अपने जस्टिस डिपार्टमेंट को कि आप जो आपके ऑफिसर्स इनको ढूंढ रहे हैं तो ये तमाम के तमाम ये जो लोग हैं इनके स्टूडेंट वीजा जो हैं ये कैंसिल करो क्योंकि ये हमास सिंपथाइजर्स हैं और हमको ये लोग नहीं चाहिए है कॉलेज कैंपसेस के ऊपर क्योंकि ये रेडिकलिज्म जो है वो फैला रहे हैं। वाजी वाह क्या बात है, यानी कि जो इसराइल है वो रेडिकलिज्म नहीं फैला रहा, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं कर रहा, और अगर कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो वो एंटी सेमेटिक है। वाह वाह क्या बात है भाई, क्या सलाम है भाई आपके ह्यूमन राइट्स को। ट्रंप साहब के जो पिक है वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने उनको बहुत ज्यादा डिनाउंस आज किया, और उनको तो बल्कि प्रिडेटर कहा है। उनकी कजन जो है कैरोलिन कैनेडी ने जो कि फॉर्मर यूएस एम्बेसडर भी थी उन्होंने, और ये जो है शी इज द ओनली सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने एक लेटर लिखा है सेनेट को अपने कजन रॉबर्ट एफ कैनेडी के बारे में, और उन्होंने कहा जी कि आप इसकी कैंडिडेसी जो है उसको कंसिडर करो। उन्होंने कहा जी कि आप इसको अमेरिकन का हेल्थ दे रहे हो तो इसीलिए मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि मैं इसके ऊपर बात करूं, ये बिल्कुल एक अनक्वालिफाइड पर्सन है, मैं सारी जिंदगी इसके साथ रही हूं, मैं पली बड़ी हूं, मुझे पता है इसके बारे में, ये इंतहाई खतरनाक आदमी है, ये जो बर्ड्स हैं उनको अपने पेट्स के आगे डालता है एज अ प्रीडेटर, और उसका जो बेसमेंट और गराज और डॉर्म रूम है वो ड्रग्स के सेंटर्स हैं। इसको बड़ी खुशी होती है कि ये जो बेबी चिकन और माइस जो है उनको जिंदा ब्लेंडर में ब्लेंड कर देता है अपने हॉक्स के लिए, और इसलिए मैं आपके पास ये अटेंशन लाना चाहती हूं कि आप इसको जो है वो मत करें। ये जो है पेरेंट्स जो बेचारे बड़े डेस्परेट होते हैं जिनके बच्चे सिक होते हैं उनको बोलता है बड़ा क्रिटिकली के डिस्करेज करता है कि तुम वैक्सीनेशन ना कराओ, जबकि इसने अपने खुद के बच्चों को वैक्सीनेशन कराया हुआ है। तो बड़े ही सीरियस एलिगेशन आज कजन साहिबा ने लगाए हैं, तो बहरहाल अब देखो जी क्या करते हैं, लेकिन ये बड़े ही क्लोज हैं ट्रंप साहब के। उसकी वजह ये है कि ये खुद एज अ प्रेसिडेंट रन कर रहे थे और फिर ये ट्रंप साहब के हक में बैठ गए थे, तो ट्रंप साहब को बड़ा इनसे मोहब्बत है, तो ये बिल्कुल ये पास हो जाएगा, ये पास कर दिया जाएगा। बहरहाल ये एलिगेशन जो है इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने कहा जी कि ही इज अ प्रीडेटर, तो अब ये तो है से डेमोक्रेट्स जो है सेनेट के अंदर उन्होंने ब्लॉक किया है जो बिल पास किया जा रहा था जिसमें कि सैंक्शन कहा गया था कि करो आईसीसी को यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ओवर इट्स इश्यूएंस ऑफ अरेस्ट वारंट्स फॉर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट, क्योंकि जो थी सेनेट बड़ी जो अमेरिकन कांग्रेसमैन थे बड़े गुस्से हो गए थे जब आईसीसी ये लेकर आई थी, आज इसको ब्लॉक किया गया कि नहीं बिल्कुल हम उसको सैंक्शन नहीं करेंगे फॉर अलेज्ड वॉर क्राइम्स इन गाजा। 54 ने इसके फेवर में वोट किया, 45 ने अपोज किया, तो इसलिए 60 वोट्स इनको चाहिए थे फाइनल वोट के लिए जो नहीं हो सके। इसके साथ साथ यूएस के अंदर दूसरी आज जो बड़ी जो मेजर डेवलपमेंट वो ये हुई है कि जो पर्सनल सिक्योरिटी थी ये जो फॉर्मर चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ थे मार्क माइली उसको जो है खत्म कर दिया गया है। पेंटागन ने कहा है जी कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो है पीट हेग्सेथ उन्होंने ऑर्डर किया है कि एक इंक्वायरी बिठाओ क्योंकि इनके ऊपर क्योंकि ट्रंप साहब इनसे बहुत ज्यादा गुस्से हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को के जो आईजी हैं उनको आज इन्होंने डायरेक्ट किया है हेग्सेथ साहब ने कि एक असेसमेंट खोलो माइली के मिलिट्री ग्रेड के ऊपर, क्योंकि इसने जो चेन ऑफ कमांड था नेशनल सिक्योरिटी पे उसके खिलाफ ये किया था, उसको अंडरमाइन किया था और यहां तक इनके खिलाफ एक्शन आए हैं कि उन्होंने कहा जी कि माइली का जो फोटो तक है वो तक पेंटागन से हटा दो और कुछ तो फोटोज हटा दिए हैं और कुछ फोटो आने वाले दिनों में हटाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि माइक माइली जो है वो उनका थोड़ा मार्क माइली जो है उनका थोड़ा खटपट हो गया था ट्रंप साहब के साथ, तो अब जाहिर है ट्रंप साहब ने अब बदले तो उनके साथ निकालने ही है ना ऐसे। नतन्याहू साहब जो है उनके बारे में अब बात आ रही है कि जी वो व्हाइट हाउस को नेक्स्ट वीक में विजिट कर सकते हैं एज द फर्स्ट फॉरन लीडर टू मीट ट्रंप आफ्टर ही वॉज स्वर्न इन एज यूएस प्रेजिडेंट इन डीसी। इसराइल की गवर्नमेंट ने कन्फर्म किया है कि ट्रंप साहब ने उनको इन्वाइट किया है ऑन फरवरी 4। देखिए अब जरा कैसी चेंज हो रही है, सबसे पहले जब अमेरिकन प्रेजिडेंट आता था तो वो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाता था, अब जी ये जा रहे हैं। नतन्याहू जो है वो कॉन्स्टेंटली थ्रेटन कर रहा है कि वो ही कैन रिटर्न टू द वॉर, लेकिन डिस्पाइट ये बार बार बातें करने के और सीज फायर इन प्लेस है ट्रंप साहब की, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इसके ऊपर बात नहीं आई। ट्रंप साहब ने रिपोर्टर्स को लास्ट वीक बताया था कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये जो सीज फायर है अपनी जगह के ऊपर रहेगा और उन्होंने कहा जी कि लेकिन ये मेरी वॉर नहीं है, ये उनकी वॉर है तो उनको डिसाइड करना है, तो फिर तुसी क्यों क्या कि मैं वॉर रुकवाई है पाजी और मैं सीज फायर कराया। यूएस जो है वो अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इसराइल को हर साल मिलिट्री एड में देता है और जो पहली सबसे पहली वन ऑफ द फर्स्ट डिक्रीज जो कि ट्रंप साहब ने की थी वो फ्रीज किया था उन्होंने इंटरनेशनल एड फॉर मिलिट्री असिस्टेंट टू ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान जैसे हमने आपको बताया एक्सेप्ट फॉर इजिप्ट एंड इसराइल। लास्ट वीक ट्रंप साहब ने ऑथोराइज किया था ट्रांसफर ऑफ 900 किलोग्राम्स ऑफ बॉम्ब्स टू इसराइल और इसको जो था पॉज किया था बाइडन साहब की गवर्नमेंट ने मई लास्ट ईयर में, क्योंकि उन्होंने कहा था ये यूज करते हैं उस पर सिविलियंस के ऊपर, लेकिन आज इन्होंने जो उन्होंने हुक्म दिया उसमें खोल दिया है और इन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल की हम जो है वो करते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको पता ही है 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रंप साहब ने यह भी कहा था कि गाजा को फौरन खाली करो, इट इज इन अ मेस, यानी कि मकसद यह है कि जी इसके ऊपर भी अब इसराइल कब्जा कर ले, जिसके ऊपर फिर जो पैलेस्टीनियंस थे उन्होंने बड़ा पुश बैक किया है तो उसके ऊपर जनाब ये आज बड़ी लेद हुई। डेनमार्क जो है जी उसने अब एक पूरा अपना प्लान जो है वो अनवेल किया है आर्कटिक एंड नॉर्थ आर्कटिक रीजन के लिए और कहा है कि हम पंप कर रहे हैं एडिशनल 2.05 बिलियन डॉलर्स इन सिक्योरिटी। उसकी वजह ये है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं ग्रीनलैंड जो है उसके ऊपर कब्जा कर लूंगा और ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क के डिफेंस मिनिस्टर ट्रोल्स लंड पुलसन जो है उन्होंने बोला है कि यह बड़ा सीरियस चैलेंज है हमारे सिक्योरिटी और डिफेंस को। उन्होंने आज ये अनाउंसमेंट उस वक्त की जिस डाइनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन जो हैं उनकी मुलाकातें अब नेटो और जो लीडर्स हैं फ्रांस और जर्मनी के उनके साथ हो रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड है कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क का हिस्सा लेना चाहिए और उन्होंने कहा जी कि यूरोप को बड़े सख्त किस्म के सीरियस थ्रेट्स हैं और ये जो है ये पूरी शिफ्ट आ रही है जियो पोलिटिकल रियालिटी के अंदर। डेनमार्क जो है उन्होंने कहा जी कि एक छोटा मुल्क है लेकिन उसके स्ट्रांग एलाइज हैं और बड़ी स्ट्रांग यूरोपियन कम्युनिटी उसके साथ खड़ी है और हम मिलकर ये चैलेंजेस को फेस करेंगे। उनकी आज मुलाकातें फ्रेंच प्रेजिडेंट मैक्रों के साथ हुई और अब वो मुलाकातें करेंगी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रुटे के साथ। आज वो बात कर रही थी पेरिस में मैक्रों साहब के साथ और रिपोर्टर्स को उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये सारी की सारी बातें मैंने अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स को कही और उन्होंने मुझे बिल्कुल पूरा यकीन दिलाया है कि वो मुझे हमें यहां पे सपोर्ट करेंगे। तो हम एक ब्रेक लेंगे।
बिल्कुल हम ऐसा करते हैं कि अब हमारे पास क्योंकि आज अजान का टाइम जो है तकरीबन 5:27 पे है तो इफ यू कैन कंटिन्यू फॉर 2-3 मिनट्स वी कैन डू.
ठीक है, ओके फाइन. फिर मैं एक आखिरी ले लेती हूँ, फिर पाकिस्तान की हम शुरू कर लेंगे ब्रेक के बाद. 23 के करीब जो पैलेस्टीनियन चाइल्ड प्रिजनर्स हैं जी, आप सोचें कि बच्चे 12 से लेकर 14 साल की उम्र के, उनको आज रिलीज किया है इसराइल ने आफ्टर ये सीज फायर डील जो हुई है, जो कि ये शो करता है कि इसराइल जो है वो सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन कर रहा है पैलेस्टीनियन बच्चों के, यानी पूरी नस्ल उनकी जो है वो खत्म कर रहे हैं और उनको प्रोसिक्यूट करते हैं मिलिटरी कोर्ट्स में. सोचें 12 साल के बच्चे को मिलिटरी कोर्ट में प्रोसिक्यूट कर रहे हैं. 290 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जो हैं उनको अभी तक रिलीज किया गया है दो बैचेस में आफ्टर ये सीज फायर हुआ था जनवरी 9 को. 10,000 पैलेस्टीनियन बच्चे अभी भी इनके इसराइली मिलिट्री डिटेंशन में है पिछले 20 साल से, अकॉर्डिंग टू सेव द चिल्ड्रन एनजीओ, ये उनका डेटा है. इनको अरेस्ट किया जाता है कि ये जी पत्थर फेंकते हैं या सिर्फ गैदर हो जाते हैं लोगों के साथ. अकॉर्डिंग टू द राइट्स ग्रुप इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, 320 किड्स जो हैं उनको इसराइली प्रिजन में जो है अभी भी रखा गया है. और 2016 में इसराइल ने एक नया लॉ अलाउ किया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि बच्चों को भी अब हम पकड़ेंगे पैलेस्टीनियंस को जो 12 से 14 साल की उम्र में है, अगर हमको लगा कि वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल है, और उनको एज एडल्ट्स मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाएगा और उनको जेल टर्म्स दी जाएंगी. और पहले यह था कि 14 साल से अगर कम बच्चा है तो उसको नहीं पकड़ेंगे और प्रिजन करेंगे. उसके बाद जब रूल चेंज हुआ तो उन्होंने कहा जी कि इससे छोटे भी अगर बच्चे हैं तो हम उनको पकड़ेंगे. तो मतलब ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है जो कि अमरीका को नजर आ रही है. अमरीका को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, सऊदी में, यूए बस इधर नजर आती हैं, इसराइल में इसको कोई नहीं नजर आती हैं. तो बहरहाल जी ये बच्चे पकड़ पकड़ के जो उन्होंने डिटेन किए हैं, मैं अभी भी बहुत सारे उनकी जेलों में हैं, अब देखेंगे उनको छोड़ेंगे या नहीं.
चलिए जनाब, ये था हमारा न्यूज का सेगमेंट वन, और अब अजान के सेगमेंट की तरफ चलते हैं. नमाज पढ़ लेंगे और मगरिब की, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे. हमारा नंबर 6478724900. तो चलें जनाब अजान के जो है सेगमेंट की तरफ, उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं और न्यूज पार्ट टू शाज़ी मलिक साहब आपके लिए लेकर आएंगे.
हो जिस में पिन्हा कोई बताए तो नाम ऐसा, वो नाम अहमद के फूल बरसे बया
क्रम. टोरंटो और गिरदोनवा के इलाकों में अब टाइम हो जाता है मगरिब की नमाज का, तो आइए सुनते हैं मगरिब की अजान.
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. अशहदु अन أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
دیکھو سر بنا بھول جانا کہیں پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام،
تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام،
خونِ گاہِ کرم ہم پہ سلطان دی،
خونِ گاہِ کرم ہم پہ سلطان دی،
تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام،
تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام،
اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے، اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے، اور سینہ مدینہ بنا دیجئے، خونِ گاہِ کرم ہم پہ سلطان دی،
خونِ گاہِ کرم ہم پہ سلطان دی،
تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔
You are listening to WTOR 770 AM Youngstown Toronto.
چار سو سولہ پانچ سو دو آٹھ ہزار سٹریس چاہے لاکھ دہ ہوئے یا کاکتا اس زندگی مشکل کر دیتا ہے، باقی باتیں ایک طرف، آپ کے فائنینشل سٹریس کا حل ہے شیراز شفیق، جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز، لاسٹ منٹ کلوزنگز ہوں یا ڈیفیکلٹیز، سبھی کے لیے شیراز شفیق 416-502-8000 لائسنس نمبر 10845 انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ۔
کون کہتا ہے کہ انشورنس کمپنیاں وقت پر کلیم ادا نہیں کرتی؟ ایک اور مسکنسیپشن کہ لائف، کریٹیکل النس، ڈسیبلٹی یا پھر ٹریول انشورنس بہت مہنگی ہیں۔ نہیں صاحب، آپ ایک بار انشور پرو کے فضل ودود سے بات کیجیے گا، 28 ایئرز آف انڈر رائٹنگ ایکسپیرئنس اینڈ 2 ایئرز ان دا فیلڈ، لائف، کریٹیکل النس، ڈسیبلٹی، ٹریول انشورنس، ہر انشورنس کے معاملے کے لیے فضل ودود آف انشور پرو 905-607-5000
دبئی جانا ہے۔
وہ کیوں؟
بیٹی کی شادی ہے، سونے اور ڈائمنڈ کی یونیک جولری کی خریداری کرنی ہے۔
چھوڑو جی، ایک دفعہ چوپڑا جیولر کو وزٹ کرو، دبئی سے بہتر ہے۔ گولڈ، جڑاؤ زیورات، ڈائمنڈ، جڑاؤ ڈائمنڈ جیولری، چوڑیاں، کڑے، پینڈنٹ، ہر زیور یونیک ہے اور بے شمار ویرائٹی ہے۔ مزے کی بات ہے، ڈسکاؤنٹس بھی بہت سارے ہیں، کس کس کا بتاؤں؟ سینگ از بلیونگ۔
ایڈریس دیں،
1066 ایلبین روڈ، ایلبین از لنگٹن کی نکر پہ۔ واٹ اے بیوٹیفل کلیکشن، چوپڑا جیولرز، 416-744-7534 کینیڈا میں دبئی، چوپڑا جیولرز۔
چاندنی
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 چاندنی بینکویٹ ہال،
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز، ساؤنڈ سسٹم انوویشنز، چاندنی بینکویٹ ہال،
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration,
indoor and outdoor golf course facilities, Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888, 905-458-8888 or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
Messages and chit-chat.
वेलकम बैक। तो हम आगे हैं वापस जनाब ब्रेक से, तो अब हम पार्ट टू अपना शुरू करेंगे न्यूज का। बट दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय अदनान अलवी साहब। अदनान अलवी साहब जो हैं वो लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और बहुत जबरदस्त उनके पास भी इंश्योरेंस प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं। इसके अलावा आरईएसपी आरएसपी अगर आपको चाहिए तो आप जरूर संपर्क करें अदनान अलवी साहब से। वो कहते हैं जी कि आपको गरीब होकर रहने की जरूरत नहीं है, अमीर होकर जियो। ठीक है जी, तो आप उनसे करें। इसके अलावा क्यूटीएल क्विक ट्रक ल्यूब, वो कहते हैं जी आपका जो है ट्रक वो फर्राटे भरेगा रोड के ऊपर, तो आप नेपनी के लोकेशन पे अगर आओगे तो एक गेट से अंदर आओगे, अपना ऑयल वॉल चेंज करा के सारा कुछ ठीक अपना करवा के दूसरे गेट से जब आप बाहर निकलोगे तो साथ ही आप यूएसए की तरफ जा सकते हो। तो बहुत ही जबरदस्त उनके पास ऑयल्स हैं हाई एंड, जो कि आपके जो ट्रक है उसको खराब नहीं करते हैं उसके मशीनरी को, तो आप उनको जरूर विजिट करें। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल पूरी तरह से कमिटेड है कि वो फैसिलिटेट करेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको, और बहुत ही कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरमेंट बनाएगा और स्ट्रीमलाइन करेगा प्रोसेसेस को और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देगा। ये जो गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो प्रेस रिलीज आ जाइए, उसने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान है उसकी बहुत ही यूनिक जो है वो पोजीशन है और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जबरदस्त ये जो है डेस्टिनेशन है पाकिस्तान। आज इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात यूएस डेलीगेशन ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ हो रही थी, जिसको लीड कर रहे थे हेज फंड मैनेजर जेंट्री बीच, और उन्होंने बताया जी कि पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, हमारा जो स्किल्ड यूथ वर्कफोर्स है, और जो हम कंज्यूमर मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हैं उसमें बिजनेस के बहुत सारे मौके रहेंगे। उन्होंने बहुत ज्यादा थैंक यू बोला इस डेलीगेशन को फॉर एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। बीच ने भी पाकिस्तान की बहुत तारीफ की कि हां जी बड़ी ग्रेट इकोनॉमिक पोटेंशियल है यहां पे, और बच्चे जो हैं बड़े जबरदस्त हैं, और हम जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट का जो प्रो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है बहुत ही अच्छा है और पाकिस्तान बिल्कुल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है। बीच ने कहा जी कि यहां पे बहुत जबरदस्त बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है बिजनेस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्स फील्ड्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और पाकिस्तान जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है और बड़ा यूनिक है। पाइजन ये आप आते हैं हमें क्यों बता रहे हो, क्या चाहते हो हमसे? अडे चाहते हो? अडे हम एब्सोल्यूटली नॉट, नहीं दे रहे हैं आपको है ये इतनिया तरीफा चाहिए तेनू, ये आपने बिल्कुल गेम हमारे साथ अब नहीं खेलनी। लेकिन जाहिर है कि वो तो गोडे टेक देंगे, वो तो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, सड़े प्राइम मिनिस्टर साहब तो क्या कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये जो है जेंट्री बीच साहब जो हैं, इन्होंने आज और भी बहुत सारी बातें की हैं, आज रिपोर्टर्स के साथ भी इन्होंने बातें की हैं, और इन्होंने रिचर्ड ग्रैनल के बारे में भी बातें की हैं। असल में हुआ क्या है कि रिचर्ड ग्रैनल साहब के जो एक्स के ऊपर बहुत सारे ट्वीट थे इमरान खान को लेकर, सपोर्ट इमरान खान और इस तरह के, वो सारे जो थे वो गायब हो गए। अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि रिचर्ड ग्रैनल इज अ ग्रेट गाय, मैं बड़ा उससे इम्प्रेस्ड हूं, बड़ी जबरदस्त इसकी नॉलेज है पाकिस्तान के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि शायद उसको जो है वो, क्योंकि बड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो शायद उसको ये जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं उसके लिए उसको जरा ट्रैप किया गया होगा या कुछ होगा, इसीलिए जो डजन ऑफ इसकी जो ट्वीट हैं वो इन्होंने जो है वो की हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही जबरदस्त अमेरिकन है, मैं इनके साथ मिला हुआ हूं, और ये जो है ही इज अ इनक्रेडिबली स्मार्ट एंड इफेक्टिव एंड हम्बल पर्सन। जो लोग एक साल में काम करते हैं वो ये एक दिन में काम कर सकता है, और वो कहने लगे जी कि पाकिस्तान की एक लॉबी है यूएस के अंदर बहुत बड़ी, जिसके के लिए 2 to 3 million dollars स्पेंड करना पर मंथ कोई बड़ी बात नहीं है इमरान खान पे। तो इसी को देखते हुए शायद ग्रैनल ने जो है वो बड़ी सपोर्टिव ईमेल, ये जो सॉरी टेक्स्ट डाले थे एक्स के ऊपर, तो इसलिए डाले थे। लेकिन मैं और वो, हम दोनों उस तरह के अमेरिकन हैं जो कि दो कंट्रीज यानी पाकिस्तान और अमरीका के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। अच्छा जी, अब जब इन्होंने स्टोरी बताई ना सारी, उसके साथ ही पाइजन जो हैं उनकी जो हो गई जरा शर्मिंदगी, उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि ड्रॉप साइट के जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं रायन ग्रिम, जो कि पहले इंटरसेप्ट के साथ होते थे, उन्होंने कहा जी कि मुझे हंसी आ रही है बात सुन के, उसकी वजह यह है कि जो रिचर्ड ग्रैनल का अकाउंट है उसकी तमाम ट्वीट 45 days के अंदर डिलीट हो जाती हैं, और जो कुछ जो अगर उनको वो चाहें तो वो उधर रख सकते हैं। और वो कहते हैं जी कि ये अगर आप उनका जो अकाउंट है उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तक, तो ये सारी की सारी चीज जो है ये कंफर्म हो जाएगी। ਤੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਹੈ ਪੀਕਾ ਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੀਕਾ 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 ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2025, ਜਿਸਕੋ ਕਿ ਅਬ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਕਾ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥਾ ਇਨਕੋ, ਤੋ ਯੇ ਅਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲਾਅ ਬਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਕੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਕੁਛ ਟਵੀਕਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸੈਨੇਟ ਮੇਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਸ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿੱਲ 2025, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵਿਮੈਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2025। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੇ ਉਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਕੋ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਜੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਯੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੇ ਇਨਕਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਅਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਯੇ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਯੇ ਹਮਸੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮਕੋ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੋ, ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੇ ਯੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਡ੍ਰੇਕੋਨੀਅਨ ਲਾਅ ਹੈ ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਮੇਂ ਸੇ ਹਮੇ ਜੋ ਹੈ ਬੂਟੋਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਆਪਕੋ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਡਿਕਟੇਟ ਸਾਰਾ ਕੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਗੈਲਰੀ ਮੇਂ, ਉਨ ਸਭ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੇ। ਪੀਕਾ ਕਾ ਯੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਸਕੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਈ ਹੈ, ਬੈਕਲੈਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬ ਕਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਅਬ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬਿਠਾਏਂਗੇ। ਔਰ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਔਰ ਯੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਆਪਨੇ ਲਗਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਇਟ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹੀ ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਾ ਹੀ ਲਗਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਥੀ ਜੋ ਪੀਡੀਐਮ 1 ਕੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੀ ਉਸਨੇ ਇਸਕੋ ਪੀਡੀਐਮ 1 ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੀ, ਸੋਰੀ 2016 ਕੀ ਜੋ PMLN ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੀ ਉਸਨੇ ਇਸਕੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਆ ਥਾ। ਫਿਰ ਇਸਕੋ ਬੜਾਵਾ ਜੋ ਥਾ ਵੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿਆ PTI ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ PDM 1 ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸਕੋ ਔਰ ਬੜਾਇਆ। ਤੋ ਯੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੇ ਚਲਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਕੋ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੇ ਉਪਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਈ, ਫਿਰ ਇਮੇਜਸ ਪੇ, ਫਿਰ ਸਪੀਚ ਪੇ, ਤੋ ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਕਾ ਮੈਸਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਹਮ ਆਪਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਆਪ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਗਲਤ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਯੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਗਲਤ ਔਰ ਠੀਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਿਊਜ਼ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਨੇ। ਤੋ ਕਾਫੀ ਜਰਨਲਿਸਟੋ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਪੇ ਮਚਾਇਆ। ਆਫਟਰ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਟਾਕਸ ਵਿਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, PTI ਨੇ ਅਭੀ ਫਰੈਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੀਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਮ ਫੈਬਰੀ 8 ਕੋ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਲਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਉਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਜੋ ਹੈ 8 ਫੈਬਰੀ ਕੋ ਬਲੈਕ ਡੇ ਮਾਨੇਂਗੇ, ਜਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਸਿਵ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋਈ ਥੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਚੀਨਾ ਥਾ। ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਮਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ DC ਆਫਿਸ ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਕੋ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਯੇ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ PTI ਕੇ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੇਂ ਮਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਬੱਚਰ ਔਰ ਅਲੀ ਇਜਾਜ਼ ਬੁੱਟਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੇ ਦਿਆ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ PTI ਕੀ ਲੀਡਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆਊਟਸਾਈਡ DC ਆਫਿਸ ਕਹਾ ਕਿ PTI ਕੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਟੂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਯੋਮ ਏ ਸਿਆ ਔਨ ਫੈਬਰੀ 8, ਜਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਾਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਚੋਰੀ ਕੀਆ ਥਾ ਔਰ PTI ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਆ ਥਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਇਸਟ ਨੰਬਰ ਮੇਂ ਯੇ ਜੀਤ ਕਰ ਆਏ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਕੋ ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਨੇ ਦਿਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਰੈਲੀਜ਼ ਨਿਕਾਲੇ, ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਾਤਾ। ਤੋ ਹਮ ਫਿਰ ਅਬ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਢੂੰਢੇਂਗੇ ਅਗਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਹਮਕੋ ਯੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਕੀਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਹਮ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ। ਤੋ ਯੇ ਬਾਤੇਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਅਫਸੋਸ ਕਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁਆ, ਜੋ ਮਹਾਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ UP ਕੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪੀਡ ਹੁਆ ਔਰ ਸਟੈਂਪੀਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ 40 ਲੋਕੋ ਕਾ ਡੈਥ ਹੁਆ। ਯੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਮਾ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਾਟਰਸ ਹੈ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪ ਲੇ ਸਕੇ, ਜੋ ਉਨਕੇ 6 ਵੀਕ ਕਾ ਹਿੰਦੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ। 40 ਬੋਡੀਜ਼ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਫਿਰ ਲਾਏ ਗਏ ਥੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਾਸਪਿਟਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਮੋਰਗ ਮੇਂ, ਔਰ ਯੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਸਬਸੇ ਬੜਾ ਜੋ ਹੈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ 40 ਕਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਯੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਯੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਜਬ ਮੋਰਗ ਮੇਂ ਆਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੋ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕੋ ਯੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਆ ਕਿ ਭਈ ਜੋ ਜੋ ਜਿਸ ਕੀ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇ ਔਰ ਲੇਕਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰੌਟ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਥੇ ਵੋ ਬਾਹਰ ਮੋਰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਭਈ ਜੋ ਜੋ ਉਨਕੇ ਜੋ ਲੋਕੋ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਵੀ ਉਨਕੋ ਲੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀ ਵੋਟਰ ਕਾ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਮੇਂ ਕਿ ਆਪ ਬਤਾਇਆ मोदी जी की गवर्नर से भी वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, जबकि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है अब एनुअल बजट जो है इसी वीक में लाने वाली है। 37% जो थे 5,269 एडल्ट्स जो इंडियन स्टेट्स में जिनका इंटरव्यू लिया गया था, जो सर्वे किया था, 37% ने कहा जी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत गिर गया है लास्ट ईयर से और ये हाईएस्ट नंबर है सिंस 2013। उन्होंने कहा जी मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं 2014 से, तब से जो है वो चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है और वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ये है और इसके अंदर अब इसकी ग्रोथ में हौले हौले स्लो होती जा रही है और चार साल में और भी ज्यादा स्लो होगी। 2/3 जो थे उन्होंने कहा जी कि इन्फ्लेशन बिल्कुल अनचेक्ड है और गवर्नमेंट के पास कोई तरीका नहीं है इसको नीचे लाने का और प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए हैं। हाफ ने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बुरे तरीके से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रही है। हालांकि मोदी जी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बजट में भी वो बहुत सारे मेजर्स लाने वाले हैं फॉर फॉल्टरिंग इकोनॉमी एंड लिफ्टिंग डिस्पोजेबल इनकम। उन्होंने कहा जी कि हाफ ऑफ द पीपल जो है उन्होंने कहा जी हमारा हालत 2024 जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ऊपर चले गए हैं। 2/3 जो थे उन्होंने कहा जी कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो अब मुश्किल हो गए हैं मैनेज करने। हालांकि जो ग्रोथ है इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के जॉब मार्केट में बेतहाशा है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए खासतौर पर जो यंग पॉपुलेशन है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम है क्योंकि वो कहते हैं जी कि हम ज्यादा पैसे कमा नहीं सकते हैं। लास्ट जो बजट था उसमें इंडिया ने 24 बिलियन यूएस डॉलर्स जो थे वो रखे थे कि 5 ईयर्स में हम वेरियस प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे टू क्रिएट जॉब्स, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और अभी भी उसके ऊपर बस जो है डिस्कशन ही चलता चला जा रहा है। अच्छा जनाब, आज की एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर जो खबर है वो ये है कि राखी सावंत साहिबा जो पाकिस्तान आ रही हैं वो कह रही हैं जी कि इस दफा मैं शादी मशहूर पाकिस्तानी एक्टर डोडी खान के साथ करूंगी। उन्होंने इनको एक प्रपोजल भेजा था और इन्होंने कहा जी मैंने वो मैरिज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा जी मैं मक्का 3 बार जा चुकी हूं और वहां पे जाके मैंने दुआ की थी कि बहुत ही पक्का मुसलमान मुझे मेरा हस्बैंड मिले। वाह 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 क्या बात। तो भाजी फिर आप चलो ठीक है मैं कुछ नहीं कह रही। तो वो कह रही है इसीलिए मैं पाकिस्तान में शादी करने आ रही हूं। डोडी साहिबा ने भी इनको एक वीडियो के अंदर बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया और एक जो इनका क्लिप है वो अपने ऑफिशियल इंस्टा के ऊपर इन्होंने शेयर किया और उन्होंने कहा कि राखी जी ये बताइए कि बारात लेकर इंडिया आना है या दुबई। भाईजान उठे थे थोड़े टुकड़े हो जाएंगे, इंडिया जाओगे थे दुबई लाके जाओ बेहतर है थोड़े वास्ते, बहरहाल थोड़ी मर्जी। और जो अब फैंस हैं बड़े एक्साइटेड हो गए हैं, जाहिर है वो अब बड़ा एक्साइटमेंट में ये सारी डिटेल्स का वेट कर रहे हैं। जो भी थोड़ी सी डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक ये लोग अपना हनीमून स्विट्जरलैंड में या नेदरलैंड्स में मनाएंगे और फिर सेटल उसके बाद शादी के बाद दुबई में होंगे। दुबई बड़ी अच्छी जगह है सेटल होने के लिए ऐसे सारे कपल्स के लिए। करीना कपूर साहबा जो हैं वो अब अटेंड कर रही हैं 25th एडिशन ऑफ आईफा अवार्ड्स और वहां पे ये परफॉर्म करेंगी जो कि अब ये अवार्ड्स मार्च में आने वाले हैं और बहुत सालों के बाद जो है वो कहती हैं कि मैं आईफा के स्टेज के ऊपर नजर आऊंगी और ये सिल्वर जुबली एडिशन रहेगा इनका आईफा का। वो कहती हैं जी कि ये जो इवेंट है मेरे इट्स क्लोजर टू माय हार्ट और इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकी है। हो सकती है कि इस दफा जो मैं परफॉर्म करूंगी और ट्रिब्यूट दूंगी अपने लेजेंडरी ग्रैंडफादर राज कपूर साहब को उनके 100th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो अभी रिसेंटली जो मुल्क में अभी जो है वो मनाया गया था। उन्होंने कहा जी कि बहुत प्यार से इसको उन्होंने मनाया था और वो कहते हैं जी मेरे लिए बहुत ही सरियल मोमेंट है ये और मैं अब डॉट्स कनेक्ट कर सकूंगी इन द सेलिब्रेशन ऑफ लेगेसी फैमिली एंड ड्यूरिंग पावर ऑफ इंडियन सिनेमा। उन्होंने कहा जी कि मैं जो है इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं कि बहुत एक्साइटेड नहीं है एक्साइटेड तो हूं कि मैं अब इसमें परफॉर्म करूंगी। आपको बताइए अभी दिसंबर 2024 में हमने आपको ये खबर सुनाई थी कि कपूर फैमिली जो है उन्होंने राज कपूर साहब की जो सेंचुरी जो एनिवर्सरी की जो सेलिब्रेशंस हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से की थी। इस सिलसिले में ये लोग मोदी जी से भी मिले थे और एक स्पेशल फिल्म फेस्टिवल भी जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। कियारा आडवाणी आपको पता ही है कि अभी नजर आई थी आपको जो रामचरण की मूवी आई थी गेम चेंजर उसके अंदर, हालांकि फिल्म बहुत बुरे तरीके से बॉम्ब कर गई थी लेकिन इन दोनों का जो केमिस्ट्री था उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया। इनका जो ट्रैक है जरा गंडी उसके ऊपर ये दोनों बहुत जबरदस्त लग रहे थे लेकिन फैंस बड़े ही डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने कहा हमको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कियारा का कैसा गंदा कॉस्ट्यूम था और ये इस गाने का कोरियोग्राफी किसने किया था इतना बकवास। तो बहुत ही ब्रूटली इनको जो है ट्रोल किया जा रहा है। तो फैंस ने क्या उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग गर्ल, किसी को बहुत ही गुस्सा है। उन्होंने कहा क्या बकवास कपड़े पहने हैं। किसी ने कहा जी इतनी भी क्या मजबूरी थी कि ऐसा खराब डांस किया। तो बहरहाल जी बहुत बेचारी को टी रोल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ 35 इयर्स उनकी एज है जनाब, ही ज्वाइन स्मॉल ग्रुप ऑफ बैटर्स टू रीच 10,000 टेस्ट रन्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ओपनिंग टेस्ट अगेंस्ट श्रीलंका एट गाले इंटरनेशनल स्टेडियम. जब स्मिथ बैटिंग स्टार्ट करने गए तो उनके पास 9,999 रन थे, शॉर्ट ऑफ वन रन. और पहला जो उन्होंने बॉल फेस किया था प्रभत जयसूर्या का, तो ये अब 15th रेड बॉल क्रिकेटर बन गए हैं और फोर्थ ऑस्ट्रेलियन टू गेट दिस फीट. ही ज्वाइंस हिज फेलो मैन रिकी पॉन्टिंग, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, और इस लिस्ट को लीड करते हैं सचिन तेंदुलकर, जिसने के बनाए हुए हैं 15,921 रन इन हिज रेड बॉल करियर. सुनील गवास्कर जो है वो पहला बंदा था जिसने क्रॉस किए थे 10,000 रन इन टेस्ट, और ये जो फीट थी उसने लिया था अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1987 एट अहमदाबाद. और इसका जो स्मिथ का इम्प्रेसिव एवरेज है ऑफ ओवर 55 इन 114 प्रायर टेस्ट, और जिसके के अंदर 34 सेंचुरीज हैं सिंस हिज डेब्यू इन 2010. तो बिग बिग डील है जी. लुईस हैमिल्टन है ये मेरा फेवरेट जो है, उसका क्रैश हुआ आज सेकेंड डे ऑफ टेस्टिंग of 2023 Ferrari Formula One car at Barcelona Circuit de Catalunya. Seven-time world champion hai aur ab ye test run kar rahe hain kuch new team ke sath at his Fiorano track, aur usme inhone ab jo naya setup hai usme thoda karne ki koshish kar rahe hain, zara baithne ki yani koshish kar rahe hain, kyunki inhone Mercedes ke sath the jisko ke choda aur ye inhone hit kiya apni gaadi ko, isme inka jo hai ye unhurt rahe. Asal mein inka jo vehicle ka control tha inse chala gaya tha aur phir jo ek part of circuit jo tha usme jaake inki gaadi lagi thi aur barrier inhone और जो सस्पेंशन है उसमें डैमेज हुआ और बॉडी वर्क्स में भी काफी डैमेजेस आए हैं. तो ये जो है प्री सीजन टेस्टिंग वो कर रहे हैं फॉर न्यू सीजन कार्स जो स्टार्ट अब होने वाले हैं ये ग्रैंड प्री बहरेन में ऑन फरवरी 26 और ये कंटिन्यू रहेंगे फरवरी 28 तक. इनके पार्टनर जो हैं चार्ल्स लेक्लर्क एट फरारी हैं, जो कि जिनके पास कोई भी अभी तक टाइटल नहीं है सिंस 2007. तो हो सकता है लुईस के आने के बाद ये हो जाए. 2025 का सीजन जो है वो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री से शुरू होएगा और जो है फिर उसके बाद ये और जगह जाएंगे. ठीक है जी. ऐसे रोहित शर्मा साहब जो हैं 36 इयर्स वैसे इनकी एज ज्यादा नहीं है, इन्होंने आज फॉर्मली कंप्लेंट डाला है बीसीसीआई के साथ अगेंस्ट सुनील गवास्कर फॉर हिज क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इंडिया टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. शर्मा को आप देख ही रहे थे, बहुत ज्यादा जो है वो बहुत महीनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा उनसे बैटिंग नहीं हो रहा है. तीन टेस्ट मैचेस जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन्होंने खेले थे उसमें सिर्फ इन्होंने 31 रन बनाए हैं और फाइनल टेस्ट में तो इन्होंने अपने आपको खुद ही ड्रॉप कर लिया था जो सिडनी में होया था. तो एक कॉलम लिखा था सिडनी मॉर्निंग हैरल्ड के अंदर गवास्कर में, जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे लग रहा है कि शायद जो है रोहित रिजाइन कर जाएगा फ्रॉम हिज रोल एज कैप्टन, क्योंकि इसका फॉर्म जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है, अगर ना किया तो फिर ये करेगा. और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स को इसको बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम रिजाइन करो, यानी कि वो हिंट कर रहे थे कि ये खुद ही जो है एग्जिट कर जाएगा इधर से. तो उसके ऊपर रोहित शर्मा ने बड़ा गुस्सा मनाया और उन्होंने कहा जी मैं आपकी शिकायत करूंगा बीसीसीआई से. चलो जी कर लो फिर आप. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स जो इस वीक में आई हैं उसमें पाकिस्तानियों का कुछ प्रदर्शन अच्छा नहीं है, लेकिन जो स्पिनर्स हैं हमारे नुमान अली एंड साजिद खान, उनकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इन टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज अभी, उससे वो जरा थोड़े से रैंकिंग में ऊपर गए हैं. मैनी पाकिस्तान प्लेयर्स जो हैं वो डिप किए हैं रैंकिंग में. नुमान ने जो 16 विकेट्स लिए थे इन टू मैच सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसकी वजह से अब ये फिफ्थ पोजीशन पे आ गए हैं टेस्ट बॉलर रैंकिंग. इनके जो हैं 806 पॉइंट्स हैं. साजिद जो थे उसने लिए थे 15 विकेट्स और वो भी अब दो स्पॉट्स ऊपर क्लाइंब करके 21st पोजीशन पे आ गया विद 644 पॉइंट्स. स्पिनर अबरार अहमद जो है वो भी ही हैज मूव्ड 3 प्लेसेस टू 50th फ्रॉम 52nd. और लेकिन जो रेटिंग है शाहीन शाह अफरीदी की वो और एक स्पॉट गिर गई है और वो 22nd स्पॉट पे आ गए हैं विद 641 पॉइंट्स. नसीम शाह भी नीचे आए हैं 4 प्लेसेस टू 40th प्लेस. और जो खुरम शहजाद हैं वो भी गिर के नीचे आए हैं 65th पोजीशन पे. तो फायन ये कोई अच्छी किरकिट नहीं है. ए व्हाट इज गोइंग ऑन ना जी, ये हमारी खर में आज की.
तो ये थी हमारी आज की गर्मा गर्म खबरें.
yes.
इसको आप खर बे बोलते
हैं. खर बे
ओवरऑल आपके
एक्साइटेड जैसे मैं कह रही
हूं. एक्साइटेड
बहुत एक्साइटेड हो गए हैं लोग कि शादी हो रही है डोडी की राखी सावंत के साथ.
हो ही ना जाए.
हाँ तो वो तो अभी आ गया ना प्रपोजल, तो उसने मान भी लिया.
ठीक है, एंजॉय करें.
एंजॉय का मजा लें.
एंजॉय का मजा लें.
हाँ, और अभी वो पाकिस्तान भी आ रही है और उसकी बड़ी तस्वीरें भी आई हैं आपने देखें जो पहले कभी उसने कोई वसीम अकरम और उनके साथ तस्वीरें खिंचाए थे, तो बड़े तस्वीरें आ रहे हैं।
नहीं, वो आनी आमिर के साथ जो उनका आपने बताया।
हाँ, मैंने बताया भी था वो कि मुझे एयरपोर्ट पे लेने आओ।
ठीक है जी,
हाँ
हम भी पहुंच जाते हैं।
चलो तुम भी जाओ। तुम कराची से वापस क्यों आ गए हो भाई? तुमने उसको रिसीव नहीं था करना?
इस बार कराची ने,
तुम चूंकि आ गए हो
इसलिए कराची ने लाइफ
नहीं, कराची ने बीमार नहीं किया तुमको, चैना ने बीमार किया। तुम ठीक कराची होके आए हो, अनग्रेटफुल आदमी, तुम्हें ठीक किया डाक करने वहाँ पे।
हाँ, इस पर तो कोई शक नहीं।
हाँ,
है
तो फिर
उन्हें जो है पता होता है बीमारी की जड़ क्या।
यस,
तो चले जनाब,
खासतौर पे अगर वो आमिर में हो उनको फौरन पता चल जाता है कि ये क्या है, वेयर अबाउट्स बीमारी।
खुली किताब है ना, ज्यादा छुपी किताब है, एवरीबॉडी नो,
छोटी सी किताब है।
हाँ, खुली किताब है। चले जनाब, बहुत शुक्रिया सर जी आपका हमारे साथ शामिल होने का, खबरें देने का, और एज यूजुअल इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहीं।
ठीक है जी,
तो कल फिर आपसे मुलाकात
होगी। ठीक है,
चले जी, बहुत शुक्रिया तमाम सामईन का, नाजरीन का हमारे साथ शामिल होने का, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं 6478724900 डायल करके, हमारी वेबसाइट eawaz.com, इसके अलावा हमारा ई आवाज टीवी तमाम ही IPTV बॉक्सेस में मौजूद है ई आवाज के नाम से, तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां आप हमें लाइव 24/7 देख सकते हैं। चले जनाब, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से इजाजत लेंगे, हमारी अरमा मुजफ्फर साहब की तरफ से, हमारी जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जशान अहमद की तरफ से इजाजत लेंगे। मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।